سورہ یونس مکہ کے آخری دور کی سورتوں میں سے ہے. نام سے ایسے لگتا ہے جیسے اس سورت میں حضرت یونس کی کہانی ہوگی, بلکہ ایسا نہیں ہے, اس میں حضرت یونس کا ذکر آیا ہے. تو دیکھتے ہیں سورہ یونس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں, یعنی اس قرآن کی ایک ایک آیت حکمت سے بھری ہوئی ہے, اس کا ایک ایک حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. قرآن پڑھنے سے حکمت آتی ہے, قرآن پر عمل کرنے سے زندگی حکمت سے بھر جاتی ہے. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے؟ تو گویا وہی کا مقصد کیا ہے, لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنا. جس طرح الارم ہمیں نیند سے جگاتا ہے, اس طرح اللہ کا کلام سوئے ہوئے ہوں کو, اپنے انجام سے غافل لوگوں کو جگاتا ہے, اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر تخت حکومت پر جلوہ فرما ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. جس کا گھر ہوتا ہے, حکم بھی اسی کا چلتا ہے. تو اس کائنات میں, ہمارے وطن میں, ہر جگہ, میری اپنی ذات میں, میرے گھر میں بھی اللہ ہی کا حکم چلنا چاہیے. کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے. یہی اللہ تمہارا رب ہے, لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو, پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ ہم منافقین کا پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ ماتھا زمین پر رکھتے تھے مگر دل نہیں جھکاتے تھے. مجھے اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کی بندگی کرنی ہے, اور یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. جائزہ لیں میں اور آپ اپنا, کہیں بے مقصد زندگی تو نہیں جی رہے؟ اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے, یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. الیہ مرجعکم جمیعا. سوچیں ذرا, تصور کریں, میدان حشر کا تصور کریں. اربوں کھربوں انسان کھڑے ہیں, پن ڈراپ سائلنس ہے, نام اعمال دیے جا رہے ہیں, اور مجھے فکر ہے کہ میرے گناہ ہی گناہ, کہیں اللہ کو ناراض کیا, کہیں والدین کی نافرمانی ہے, کہیں غیبت ہے, کہیں دل دکھایا, کہیں کوتاہیاں ہیں. ہائے اللہ, کیا کروں؟ تو آنکھیں کھولیے, اللہ کا شکر ہے ابھی وقت ہے, ابھی مہلت باقی ہے. اپنے رب سے معافی مانگ لے, شیطان پر لعنت بھیجے, آج اس اپنے نام اعمال کی کتاب کی سیاہیوں کو صاف کر لے, مٹا لے اپنے گناہوں کو, نیکیوں کا آغاز کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے. تو کیا کریں, اللہ سے انصاف مانگے؟ نہیں, اللہ سے انصاف نہ مانگے, اللہ سے اس کی رحمت مانگے. جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا, وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے. یہاں دنیا میں تو کولڈ ڈرنک, اور وہاں کھولتا ہوا پانی. استغفر اللہ. اور دردناک سزا بھگتے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں, تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا, بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے, نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں. اللہ کا دن اور رات کا آنا میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا نشانی ہے؟ کہ اگر کوئی غم ہے, پریشانی ہے, تو وہ رب جو رات کو دن میں بدلنے والا ہے, وہ میرے حالات بھی بدل سکتا ہے. اور اگر زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں ہیں, تو اللہ سے غافل نہ ہو جائیں, وہ رب واپس بھی لے سکتا ہے. اللہ, ہم نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ مانگتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے, یہ کون لوگ ہیں؟ آگے آیت بتا رہی ہے, اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں, اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. والذین ہم عن آیاتنا غافلون, ہماری آیات سے بے خبر ہیں, ہماری کتاب سے بے خبر ہیں. تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہاں کون مراد ہے, کس پر یہ بات صادق آ رہی ہے, کون رب کی آیتوں سے بے خبر ہے, کون دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گیا, کس کے لیے اللہ کی آیتوں کے لیے وقت نہیں ہے, अल्लाह करे हम ऐसे ना हो। उनका आखिरी ठिकाना जहन्नम होगा, उन बुराइयों की पादाश में जिनका इक्तसाब वो अपने इस गलत अकीदे और गलत तर्ज अमल की वजह से करते रहे। और ये भी हकीकत है कि जो लोग ईमान लाए, यानी जिन्होंने उन सदाकतों को कबूल कर लिया जो उस किताब में पेश की गई हैं और नेक अमाल करते रहे, उनका रब उनके ईमान की वजह से सीधी राह चलाएगा। यहदीहिम रब्बुहुम बीईमानिहिम, अल्लाह कैसे हदायत देता है? ईमान की वजह से, इखलास की वजह से, तड़प की वजह से हदायत देता है। हम तड़प तड़प कर अल्लाह से मांगते हैं, कभी रिस्क मांगते हैं, कभी रिश्ता मांगते हैं, कभी औलाद मांगते हैं, कभी सेहत मांगते हैं, जरूर मांगे, लेकिन हम जानते हैं कि कभी तो अल्लाह ताला दुआ को एज इट इज कबूल कर लेते हैं, और कभी उस दुआ के बदले में कोई और चीज दे देते हैं, और कभी आखरत के लिए उस दुआ को उठा कर रखते हैं। लेकिन हदायत की दुआ तड़प कर मांगना, अल्लाह इसके बदले हदायत ही देता है। तड़प कर अल्लाह से अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए हदायत मांगे। नेमत भरी जन्नतों में इनके नीचे नहरें बहेंगी, वहां इनकी सदा ये होगी, सुभानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू पाक है। और उनकी हर बात का खात्मा किस पर होगा? कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जन्नतियों की गुफ्तगू का आगाज भी अल्लाह के नाम पर और अख्तिताम भी अल्लाह की तारीफ पर। जब हर वक्त नेमतें मिल रही होंगी, उस वक्त भी जुबान पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जारी होगा। दुनिया में भी शुक्र की आदत थी, वहां भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह हमें यहाँ भी शुक्र गुजार बंदों में शामिल कर ले, और जन्नत में भी ये कलिमात कहने वाले लोगों में हमें शामिल कर ले। अब ये जो आयतें हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आयतें उस वक्त नाजिल हुई थी जबकि मुशरिकीने मक्का पर कहत की मुसीबत इतनी शदीद थी कि इनकी अकड़ी हुई गर्दनें झुक गईं, दुआएं करने लगे, जारियां करने लगे, बुत परस्ती में कमी आ गई, एक अल्लाह की तरफ रुजू बढ़ गया। नौबत ही आ गई कि अबू सुफियान ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप खुदा से इस बला को टालने के लिए दुआ करें। मगर जब वो कहत दूर हो गया, बारिशें होने लगी, खुशहाली का दौर आया, तो इन लोगों की वही सरकशियां, फिर वही बदामालियां और वही शिर्क फिर से शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी है हम इस बुरे वक्त में, मुसीबत के वक्त में, जो अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, इस्तग़फार कर रहे हैं और अल्लाह के कलाम से जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ये मुसीबत का वक्त जब दूर होगा, तो हमने इन नेकियों के इरादे पर हमने जम जाना है, हमने इन नेकियों को नहीं छोड़ना, हमने रब के का रास्ता जो इख्तियार करना है, हमने उस पर इस्तकामत इख्तियार करनी है इंशाल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, अगर कहीं अल्लाह लोगों के मामले में बुरा मामला करने में भी इतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं, तो उनकी मोहलत अमल कभी की खत्म कर दी गई होती। मगर हमारा ये तरीका नहीं, इसलिए हम उन लोगों को जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, उनकी सरकशी में भटकने के लिए छूट दे देते हैं। इंसान का हाल ये है कि जब इस पर कोई सख्त वक्त आता है, तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम इसकी मुसीबत टाल देते हैं, तो ऐसा चल निकलता है गोया इसने कभी अपने बुरे वक्त में हमको पुकारा ही ना था। सोचे अपना कोई और मुसीबत का वक्त जो आया और हमने जाए नमाजें संभाल ली, दुआएं करने लगे, फिर वो मुसीबत दूर हो गई, फिर क्या हाल हुआ? प्यारे नबी फरमाते हैं, जिसे पसंद हो कि अल्लाह सख्तियों में और मुसीबतों में उसकी दुआ कबूल करे, तो उसे चाहिए कि खुशहाली में कसरत से अल्लाह से दुआ मांगा करे। इस तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए उनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए हैं। लोगों, तुमसे पहले की कौमों को जो अपने अपने जमाने में बरसरे उरूज थी, फिरौन की कौम, नमरूद की कौम, शद्दाद, हमान, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने इनको हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की। और इनका जुल्म क्या था कि उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, तो उन्होंने ईमान लाकर ही ना दिया। इस तरह हम मुजरिमों को उनके जरायम का बदला दिया करते हैं। अब इनके बाद हमने तुमको जमीन में जगह दी है ताकि देखें तुम कैसे अमल करते हो, यानी उनकी मोहलत अमल खत्म और मेरी और आपकी शुरू। अब अल्लाह ताला मुझे और आपको आजमाते हैं, लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमा कर देखें कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह हमें इस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक दे दे, हमें अच्छे अमल करने वाला बना दे। जब इन्हें साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं, तो वो लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, कहते हैं कि इसकी बजाय कोई और कुरान लाओ, या इसमें कुछ तरमीम ही कर दो, कुछ कमी कर दो, कुछ हमारी मर्जी का इसके अंदर शामिल कर दो, कुछ हराम की भी गुंजाइश पैदा कर दो, अल्लामा इकबाल कहते हैं, बातिल दुई परस्त है, हक ला शरीक है, शिरकत मयाना हक को बातिल न कर कबूल। यानी हक और बातिल के दरमियान शिरकत को कबूल नहीं करना, हक के अंदर बातिल की आमेजिश नहीं हो सकती, हक ला शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं, ये बस इसके अंदर तरमीम नहीं हो सकती। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा ये काम नहीं कि अपनी तरफ से इसमें कोई तगैयर और तबद्दुल करूँ। जब प्यारे नबी के पास इसमें तब्दीली की कोई अथॉरिटी नहीं है तो मेरे और आपके पास कहाँ से होगी? मैं तो बस उस वही का पैरू हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मुझे एक हौलनाक दिन के अजाब का डर है। इस आयत को अंडरलाइन कर लीजिए, इन्नी अखाफ इन आसाई तो रब्बी अजाब यौमिन अजीम, कि मैं डरता हूँ अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मुझे अपने रब के अजाब का डर है, हौलनाक दिन के अजाब का डर है। कभी आपका नफ्स किसी नाफरमानी पे उकसाए, कभी कोई प्यारे जो है वो आपको किसी बुराई पर, किसी गुनाह पर आमादा करे, छोड़ो ये कर लो, ये देखो कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, तो इस आयत को याद कर लें, इन्नी अखाफ हो इन आसई, तो मुझे डर लगता है अगर मैं नाफरमानी करूँ। जब मैं पुल सिरात पर से गुजरूंगी तो कोई मुझे नहीं बचाएगा, जब नेकियां तुल रही होंगी तो कोई अपनी नेकियां लाकर मेरे मिजान में नहीं डालेगा, कोई मेरे काम नहीं आएगा। इस आयत को याद कर लीजिए और कहो अगर अल्लाह की मशीयत यही होती तो मैं ये कुरान तुम्हें कभी ना सुनाता और अल्लाह तुम्हें इसकी खबर तक ना देता। आखिर इससे पहले मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल नबुवत से पहले उन लोगों के दरमियान उन्होंने ये जिंदगी गुजारी, उनके शहर में पैदा हुए, उनके आंखों के सामने उनका बचपन गुजरा, जवान हुए, उधेड़ उम्र को पहुंचे, रहना सहना मिलना जुलना लेन देन शादी ब्याह, जिंदगी का कोई पहलू उनसे छुपा हुआ नहीं था। इतनी खुली शहादत, इतनी बड़ी बात, सादिक और अमीन के नाम से मशहूर है, गरीबों और बेवाओं की खिदमत करने में मशहूर है, अल्लाह ताला उनको दावत दे रहे हैं, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते कि जो शख्स जिसने अपनी किसी जिंदगी के मामले में झूठ ना बोला हो वो अल्लाह के बारे में झूठ बोलेगा? फिर इससे बढ़कर जालिम और कौन होगा जो एक झूठी बात घड़ कर अल्लाह की तरफ मनसूख करे या अल्लाह की वाकई आयात को झूठा करार दे? यकीनन मुजरिम कभी फलाह नहीं पा सकते, ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश कर रहे हैं जो उनको ना नुकसान पहुंचा सकते हैं ना नफा, और कहते ये है कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसे वो ना आसमानों में जानता है न जमीन में? पाक है वो और बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इब्तदन सारे इंसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख्तलिफ अकीदे और मसलक बना लिए, और अगर तेरे रब की तरफ से पहले ही एक बात तय न कर ली गई होती तो जिस चीज में वो बाहम इख्तलाफ कर रहे हैं उसका फैसला कर दिया जाता। और ये जो वो कहते हैं कि इस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, तो उनसे कहो गैब का मालिक और मुख्तार तो अल्लाह ही है, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। लोगों का हाल ये है कि मुसीबत के बाद जब हम इनको रहमत का मजा चखाते हैं तो वो फौरन ही हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियां शुरू कर देते हैं। कोई अपना दौर याद करे, गम का, मुसीबत का, बीमारी आई, हमने अल्लाह से रो रो के सेहत मांगी, अल्लाह ने दे दी, रिस्क में तंगी आई, परेशान हुए, वजीफे किए, मेहनत की, अल्लाह ने वो मुश्किल हमारी आसान कर दी। कोई ऐसी मुसीबत याद करें, और खास तौर पर आज हम जिस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, जिस आफत और जिस बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह करे कि अल्लाह अपनी रहमत से इस बीमारी और इस आफत को हमसे दूर कर दे, और बेशक वही दूर कर सकता है। तो फिर ऐसा ना हो कि अल्लाह के हुक्मों के मुकाबले में हम चालबाजियां करने लगे, पुख्ता इरादे बांधे, इस्तकामत के इरादे करें, अपने आप को सुधार लेने का इरादा बांध लें। इनसे कहो अल्लाह अपनी चाल में तुमसे ज्यादा तेज है, उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मकारियों को कलम बंद कर रहे हैं, वो अल्लाह ही है जो तुमको खुश्की और तरी में चलाता है। चुनाचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बादे मवाफिक पर फरहा और शादा सफर कर रहे होते हो, फिर यकायक बादे मुखालिफ का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगते हैं, और मुसाफिर समझ लेते हैं कि तूफान में घिर गए, उस वक़्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं कि अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। जब असबाब खत्म हो जाते हैं तो फिर अल्लाह याद आता है। हम कश्ती का सफर तो कम करते हैं, जहाज का सफर करते हैं, उस सफर को तसव्वुर में ले आए, आप जहाज में जा रहे हैं, लोग फिल्में देख रहे हैं, कोई सो रहा है और कोई गाने सुन रहा है, ऐसे में एकदम जहाज डोलता है, एकदम एक झटका आता है, तो क्या होता है, फौरन अल्लाह याद आता, फिर ना वो फिल्म जारी रहती है, ना वो गफलत की नींद, ना वो गाने, सब खत्म हो जाता है और एक अल्लाह को पुकारने लगते हैं कि अल्लाह ताला तू ही बचा सकता है। तो वो रब जो मुश्किल में बचाता है उसको आसानी में भी पुकारने वाले हों, मगर जब वो इनको बचा लेता है तो फिर वही लोग हक से मुनहरिफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। लोगों ये बगावत उल्टी तुम्हारी खिलाफ पड़ रही है, दुनिया के चंद रोजा मजे हैं, लूट लो, फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है, उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे तुम क्या कुछ करते रहे हो। माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, उस वक्त सामने आ जाएगा और कोई छोटी बड़ी बात भी ऐसी नहीं होगी जो नामे अमाल में दर्ज होने से रह गई हो। दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो जमीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई, फिर ऐन उस वक्त जब जमीन अपनी बहार पर थी और खेतियां बनी संवरी खड़ी थीं और इनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम इनसे फायदा उठाने पर कादिर हैं, यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने इसे ऐसा गारत करके रख दिया गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। किसी ऐसे मौके को याद करें, दुनिया में ये मनाजिर हम देखते, खड़ी फसल तबाह हो गई, जवान औलाद मौत के मुंह में चली गई, आपकी सारी मेहनत कंप्यूटर में एक वायरस आया और सारी सारा डाटा उड़ गया, क्या ये मनाजिर हम देखते नहीं है, क्या अल्लाह इस पर कादिर नहीं है, तो हम अल्लाह को क्यों भूल जाते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं किस तरह हम निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने और समझने वाले हैं। तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुबतला हो रहे हो और अल्लाह तुम्हें दारुसलाम की तरफ दावत दे रहा है। दारुसलाम क्या है? दारुसलाम जन्नत के नामों में से एक नाम है, इससे जन्नत मुराद है। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खोल कर मुझे और आपको पुकार लगा रहे हैं, जन्नत सजा के मुझे और आपको दावत दे रहे हैं, आओ मेरी जन्नत में। और हम अपने माज अल्लाह, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो कि हम अपने तर्ज अमल से ये साबित कर रहे हो कि हमें जन्नत नहीं चाहिए। हदायत उसके अख्तियार में है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है, जिन लोगों ने भलाई का तरीका अख्तियार किया उनके लिए भलाई है और मजीद फजल, यानी सिर्फ उनको उनकी भलाई का सिला नहीं मिलेगा, अल्लाह की तरफ से मजीद इनाम, उनके चेहरों पर रुसियाई और जिल्लत ना छाएगी, वो जन्नत के मुस्तहिक हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनके लिए ऐसी ही बुराई है, और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वो बदला पाएंगे, जिल्लत उन पर मुसल्लत होगी, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला ना होगा, उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे उन पर पड़े हुए हों, यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह, कुछ चेहरे उस रोज रोशन होंगे और कुछ चेहरे उस रोज स्याह होंगे। अल्लाह हमें उस दिन रोशन चेहरे वाले बना दे, वो दोजख के मुस्तहिक हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे, जिस रोज हम इन सबको एक साथ अदालत में इकट्ठा करेंगे, फिर इन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया है कहेंगे ठहर जाओ तुम भी और तुम्हारे बनाए हुए शरीक भी, फिर हम इनके दरमियान से अजनबियत का पर्दा हटा देंगे और उनके शरीक कहेंगे तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफी है, अगर तुम हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। उस वक्त हर शख्स अपने किए का मजा चख लेगा, सब अपने मालिक हकीकी की तरफ फेर दिए जाएंगे और वो सारे झूठ जो उन्होंने घर रखे थे गुम हो जाएंगे। इनसे पूछो कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है, ये समात और बिनाई की कुव्वतें किसके इख्तियार में है, कौन बेजान में से जानदार को और जानदार में से बेजान को निकालता है, कौन इस नज़्मे आलम की तदबीर कर रहा है, वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो फिर तुम इस हकीकत के खिलाफ चलने से परहेज नहीं करते, तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है, फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया, आखिर ये तुम किधर फिर आए जा रहे हो, जादूगर के करतब देखकर हम हैरान होते हैं, अल्लाह के करिश्मे देखकर अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं आता, अल्लाह की कुदरतों पर यकीन क्यों नहीं आता, अल्लाह के आगे ये सर क्यों नहीं झुकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक आ गई कि वो मान कर ना देंगे। इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो तखलीक की इब्तदा भी करता हो और फिर इसका इयादा भी करें, कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो तखलीक की इब्तदा भी करता है और इसका इयादा भी, फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? तुम अगर खुद अपनी फितरत की पुकार पर ध्यान दो तो तुम कभी गलत रास्ते पर ना चलो। ये कोई है जो तुम्हें बहका रहा है, जिसके पीछे तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो? इनसे पूछो, तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा भी है जो हक की तरफ रहनुमाई करता हो? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो हक की तरफ रहनुमाई करता है। फिर भला बताओ, जो हक की तरफ रहनुमाई करता है वो इसका ज्यादा मुस्तहिक है कि इसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद राह नहीं पाता इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए? आखिर तुम्हें हो क्या गया है, कैसे उल्टे उल्टे फैसले करते हो? हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर लोग महज के आसो गुमान की बिना पर चले जा रहे हैं, हालांकि गुमान हक की जरूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। गुमान और इल्म, बड़ा फर्क है इन दोनों चीजों में। इसको अगर हम इस मिसाल से समझें कि जब तक आपने आम का मजा चखा ना हो, आप उसको बयान नहीं कर सकते, या आप उसको समझ नहीं सकते, कोई कितनी भी तारीफ बयान करे उसकी। तो गुमान जो है वो हक की जरूरत को कुछ भी पूरा नहीं करता। इल्म हासिल करें, अंदाजों पर जिंदगी ना गुजारें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये कुरान वो चीज नहीं जो अल्लाह की वही और तालीम के बगैर तसनीफ कर ली जाए, बल्कि ये तो जो कुछ पहले आ चुका था उसकी तस्दीक और अल किताब की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं कि ये फरमा रवाए कायनात की तरफ से है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद तसनीफ कर लिया है? कहो अगर तुम अपने इस इल्जाम में सच्चे हो तो एक सूरत इस जैसी तसनीफ कर लाओ, और एक खुदा को छोड़कर जिस जिस को बुला सकते हो मदद के लिए बुला लो। असल ये है कि जो चीज इनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आई और जिसका माल भी इनके सामने नहीं आया, यानी जिसका इंजाम भी इनके सामने नहीं आया, इसको इन्होंने खामखा अटकल पच्चू जुटला दिया। इस तरह तो इनसे पहले के लोग भी जुटला चुके। फिर देख लो इन जालिमों का क्या अंजाम हुआ। इनमें से कुछ लोग ईमान लाएंगे और कुछ नहीं लाएंगे, और तेरा रब उन मुफसदों को खूब जानता है। अगर ये तुझे झुटलाते हैं तो कह दे कि मेरा अमल मेरे लिए है और तुम्हारा अमल तुम्हारे लिए। जो कुछ मैं करता हूँ उसकी जिम्मेदारी से तुम बरी हो, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूँ। इनमें बहुत से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, मगर क्या तू बहरों को सुनाएगा? हाँ, वो कुछ ना समझते हो। हम भी सोचे, हम तरावी में कुरान सुनते हैं, हम तिलावत लगाकर सुनते हैं, हम खुद पढ़ रहे होते हैं, नाजरा कितना समझ में आ रहा होता है? और कभी इसका एहसास पैदा होता है कि हाय क्यों समझ नहीं आ रहा, हम इतने पढ़े लिखे समझदार लेकिन कुरान को नहीं समझते। इनमें बहुत से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को राह बताएगा, ख्वाह इन्हें कुछ ना सूझता हो? अंधा कौन है और बीना कौन? अब्दुल्ला बिन उबई आंखें होते हुए भी अंधा रहा, और इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना होते हुए भी उन्हें हकीकत नजर आ गई। अल्लाह हमें दिल की बसीरत अता करे। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, लोग खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते हैं। आज दुनिया की जिंदगी में मस्त हैं, और जिस रोज अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी ने ऐसी महसूस होगी गोया ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। उस वक्त तहकीक हो जाएगा कि फिर वाकई सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठलाया। हमने अल्लाह से मिलना है, हर चीज की गारंटी होती है। आप फ्रिज खरीदते हैं, 10 साल की गारंटी है, ये वॉशिंग मशीन है इसकी 1 साल की गारंटी है, और इस्तेमाल करने वाले की कितनी गारंटी है? वो कब तक रहेगा? उसकी कोई गारंटी नहीं। और उसकी कितनी तैयारी है मेरी और आपकी, ये मुझे और आपको फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हरगिज वो राह राज पर ना थे। जिन बुरे नतायज से हम इन्हें डरा रहे हैं, इनका कोई हिस्सा हम तेरे जीते जी दिखा दें, या इससे पहले ही तुझे उठा लें। बहरहाल इन्हें आना हमारी ही तरफ है, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इस पर गवाह है। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, पर फिर जब किसी उम्मत के पास उसका रसूल आ जाता है तो उसका फैसला पूरे इंसाफ के साथ चुका दिया जाता है, और इस पर जरा बराबर जुल्म नहीं किया जाता। कहते हैं, अगर तुम्हारी ये धमकी सच्ची है तो आखिर ये कब पूरी होगी? कहो, मेरे इख्तियार में खुद अपना नफा और दरर भी नहीं, सब कुछ अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ है। हर उम्मत के लिए मोहलत की एक मुद्दत है, जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो घड़ी भर की तकदीम और ताखीर भी नहीं होती। इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह का अजाब अचानक रात को या दिन को आ जाए तो तुम क्या कर सकते हो? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मुजरिम जल्दी मचाए? क्या जब वो तुम पर आ पड़े उसी वक्त तुम उसे मानोगे? अब बचना चाहते हो? हालांकि तुम खुद ही उसके जल्दी आने का तकाजा कर रहे थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि अब हमेशा के अजाब का मजा चखो। जो कुछ तुम कमाते रहे हो इसकी पाداش के सिवा और क्या बदला तुम्हें दिया जा सकता है? फिर पूछते हैं कि वाकई ये सच है जो तुम कह रहे हो? कहो मेरे रब की कसम ये बिल्कुल सच है, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि इसे जहूर में आने से रोक दो। अगर हर उस शख्स के पास जिसने जुल्म किया है रुए जमीन की दौलत भी हो तो उस अजाब से बचने के लिए वो इसे फिदिये में देने पर आमादा हो जाएगा। मगर दुनिया की दौलत से दुनिया का सामान तो खरीदा जा सकता है, मगर आखरत में नहीं। आखरत की करेंसी दौलत नहीं है, आखरत की करेंसी तो नेकियां हैं। अल्लाह हमें उसे जमा करने की तौफीक दे। जब ये लोग उस अजाब को देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे। वो दिन जिसकी तैयारी न की, सारी जिंदगी गलत कामों में गुजार दी, अब जुबानें गंग हैं, अब नदामत है, हसरत है, परेशानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मगर उनके दरमियान पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा, कोई जुल्म उन पर ना होगा। सुनो, आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। महसूस कीजिए अल्लाह की इस पुकार को, अल्लाह के इस जुमले को महसूस करें। क्या कुछ है आसमानों में, बादल, हवाएं, फरिश्ते, जमीन में क्या कुछ है? इतने खजाने हैं, मखलूकात हैं, कितनी नेमतें हैं, कितनी दुनिया है, किसका है? सब अल्लाह का है। किसी का बड़ा घर देखते हैं तो हम मरऊब हो जाते हैं। महसूस करें रब की बादशाही को, रब की कायनात को। उस अल्लाह से मरऊब हो जाए, उस अल्लाह से मुतासिर हो जाए, और फिर हमारा सर ही ना झुके बल्कि हमारी अकल भी और हमारा दिल भी रब के आगे झुक जाए। सुन रखो, अल्लाह का वादा सच्चा है मगर अक्सर जानते नहीं। वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको पलटना है। लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई। महसूस करे रब की इस पुकार को, कोई हमें पुकारे तो फौरन मुतवज्जो हो जाते हैं, खुशी महसूस करते हैं। और अगर कोई बड़ा ओहदे वाला, बड़ी शख्सियत पुकारे तो कितनी खुशी होती है। और हमें पता चले कि किसी ने हमारा नाम लेकर बात की थी तो कुरीद कुरीद कर पूछते हैं कि और क्या कहा था। अल्लाह पुकारता है, और क्या पुकार लगाता है कि तुम्हारे पास नसीहत आ गई, मौइज़ा, वाज, ऐसी बात जो दिल को छू जाए, जो दिल को नरम कर दे, भलाई की बात, नेकी की बात, जो बहुत इखलास के साथ हो। तो मैं अपने दिल का जायजा लूं, क्या कुरान सुनकर मेरे दिल में नरमी आई है? हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ड्रामा देखते देखते हम रोने लगते हैं, कभी हम हंसने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि पूरी तरह मतवज्जो होकर, डूब कर उसे देख रहे होते हैं, तो आंखों से टप टप आंसू बह रहे होते हैं। तो कुरान में डूब कर सुने, कुरान पे पूरी तरह फोकस हो, मतवज्जो हो, तो ये दिल पर असर करता है। मगर हमारे दिल सख्त हो गए, पहाड़ों से भी ज्यादा सख्त। क्यों सख्त हो गए? दुनिया की मोहब्बत, गफलत और समझ करना पड़ना, इस चीज ने हमारे दिलों को सख्त कर दिया। उस 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाली जात की बात नहीं सुनेंगे तो खैर कहाँ से पाएंगे? वाइज तो वो डॉक्टर होता है जो कभी मीठी दवाई देता है, कभी कड़वी, मगर देता वही है जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, जो हमें बीमारियों से बचाती है। ये वो चीज है जो दिलों के अमराज की शिफा है, और जो इसे कबूल कर ले इनके लिए रहनुमाई और रहमत है। कौन से मर्ज हैं दिल के? शक है, निफाक है, हुब्बे दुनिया है, नफरत है, शिर्क है, हसद है, लालच है, बुखल है, कितनी तरह की दिल की बीमारियां हैं। मगर उसका इलाज इस कुरान ने बताया है। हजरत उमर यही कुरान ही तो था, नफरत से भरा दिल लेकर आए थे और अल्लाह के कलाम की बरकत से मोहब्बत से भर गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कबूल कर ले उनके लिए रहनुमाई है, गाइडेंस है, रोशनी है, रास्ता दिखाती है और रहमत है। ये आगाज में रहनुमाई है, दुनिया में रहनुमाई है और आखरत में रहमत है, जन्नत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज उसने भेजी है। इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। खुशी मनाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है। दिल को खुश होना चाहिए, खुशी से ये वक्त लगाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। जरा तसव्वुर में लाएं क्या कुछ समेट रहे हैं। दौलत है, सोना है, चांदी है, क्रॉकरी है, कपड़े हैं, पर्स है, किसी को किस चीज का शौक है, किसी को गाड़ियों का शौक है, किसी को मोबाइल और लैपटॉप का शौक है। जो कुछ भी दुनिया वाले जमा कर रहे हैं उन सब से बेहतर चीज क्या है? कुरान। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो तुम लोगों ने कभी ये भी सोचा है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था, इसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया? यानी हलाल और हराम की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। इनसे पूछो, अल्लाह ने तुमको इसकी इजाजत दी थी या तुम अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे हो? जो लोग अल्लाह पर ये झूठा इफ्तरा बांधते हैं, उनका क्या गुमान है कि क्यामत के रोज इनसे क्या मामला होगा? अल्लाह तो लोगों पर मेहरबानी की नजर रखता है, मगर अक्सर इंसान ऐसे हैं जो शुक्र नहीं करते।